tu bhavon yo vyakto vyaktat sanatanaha yasa sarveshu bhuteshu na satsyu na vinashyate. Yet there is another unmanifest nature which is eternal and is transcendental to this manifested and unmanifested matter. It is supreme and is never annihilated. When all in this world is annihilated, that part remains as it is.
फिर भी एक ऐसा अव्यक्त दिव्य जगत है जो कि शाश्वत है और हमेशा प्रकट रहता है. उसका कभी विनाश नहीं होता. जब इस लोक का विनाश होता है तो वो जगत वैसा ही बना रहता है.
Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Krishna's superior spiritual energy is transcendental and eternal. It is beyond all the changes of material nature, which is manifest and annihilated during the days and nights of Brahma. Krishna's superior energy is completely opposite in quality to material nature. Superior and inferior nature are explained in the seventh chapter.
Krishna ki jo divya shakti hai, adhyatmik shakti, ye puri tarah se divya aur sanatan hai. Ye kisi bhi prakar ke bhautik parivartan se pare hai, jo ki Brahma ke रात और दिवस के दौरान होते हैं. कृष्ण की जो शक्ति है ये इस भौतिक शक्ति से पूरी तरह से विरुद्ध है.
ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकाया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुभ्ये नमः.
The eighth is entitled Attaining the Supreme.
गीता का आठवां अध्याय इसका शीर्षक है परम सत्य की प्राप्ति करना.
Tonight we are reading from text number 20, in which the Supreme Lord Sri Krishna is describing the nature of the spiritual world.
और आज हम आठवें अध्याय के 20वें श्लोक से पढ़ रहे हैं जहां भगवान श्री कृष्ण आध्यात्मिक जगत के बारे में वर्णन करते हैं.
This material existence is very scientifically described within Bhagavad Gita as a place where everything is temporary and subjected to inevitable death.
इस भौतिक जगत में गीता बताती है कि हर चीज मृत्यु से प्रभावित होती है.
Within material existence, the eternal soul is struggling for eternal happiness through the agency of temporary matter. And therefore, this eternal soul is frustrated birth after birth.
इस संसार में जड़ तत्वों के द्वारा वो दिव्य शाश्वत आत्मा आनंद ढूंढने का प्रयास कर रहा है, इसीलिए वो दुखी है.
The material existence is declared by Krishna as dukalayam ashashvatam, a place due to its temporary nature is miserable.
इस भौतिक जगत के विषय में कृष्ण कहते हैं कि वो जगह हैं जहां हर प्रकार के दुख और पीड़ाएं हैं.
And in this eighth chapter of Gita, Krishna explains every place in every condition within material existence, from the highest planet down to the lowest, are all subject to these inevitable sufferings.
और इस आठवें अध्याय में भगवान समझाते हैं कि ऊपर के लोकों से लेकर सभी लोकों तक, नीचे के लोकों तक, हर जगह पीड़ा और दुख है.
At the time of Brahma's day, the cosmic manifestation is manifested, and at the time of his night, everything within the universe, from Brahma below the planets of the higher sages in Brahma, everything is completely annihilated.
ब्रह्मा के दिवस से लेकर ब्रह्मा के दिवस में ये पूरा भौतिक संसार प्रकट होता है और फिर उनकी रात्रि आने पर जितने भी ऊपर के जो ऋषि मुनियों के लोक हैं उनको छोड़कर बाकी सब कुछ विनाश किया जाता है.
कृष्ण explains here there is another nature.
कृष्ण बताते हैं कि एक और ऐसा जगत है.
The spiritual nature and everything that is manifested within this spiritual nature is eternal.
और ये है दिव्य आध्यात्मिक जगत और यहाँ जो कुछ भी है वो सब कुछ शाश्वत है.
Completely transcendental to this manifested and unmanifested matter.
और इस अप्रकट और प्रकट तत्व से पूरी तरह से परे है.
When everything in this world is annihilated, that part remains as it is.
जब इस संसार में सब कुछ सर्वनाश हो जाता है तो वो संसार वैसा ही बना रहता है.
Within material existence, there is a mixture between the material and the spiritual.
इस भौतिक संसार में आध्यात्मिक और भौतिक का मिश्रण होता है.
Actually, that spiritual nature Krishna is talking about are the planets in the spiritual sky beyond this material existence.
वास्तव में कृष्ण जो आध्यात्मिक जगत के बारे में बोल रहे हैं वो वैकुंठ लोक हैं जो इस भौतिक संसार से परे हैं.
The Shastras explain that 1/4 of existence is within the cloud of the Mahatattva, and that is the material creation.
Shastra बताते हैं कि महत्तत्व का केवल एक चौथाई हिस्सा ही ये भौतिक संसार है.
But within the spiritual sky, 3/4 of the Lord's existence is never covered by this cloud, but it remains in the lightness of God's own personal spiritual energy.
परंतु भगवान का आध्यात्मिक जो जगत है वो इस भौतिक महत्तत्व के बादल से कभी ढका हुआ नहीं रहता और भगवान के दिव्य प्रकाश से हमेशा प्रकाशमान रहता है.
Truth is compared to light and ignorance is compared to darkness.
सत्य को प्रकाश कहा गया है और अज्ञान को अंधकार.
Material nature, essentially, everything is darkness.
भौतिक संसार में सब कुछ अंधकार है.
We need electricity or sunlight in order to see.
कोई भी चीज देखने के लिए हमें बिजली या सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है.
Your body does not give out any light. It only gives off darkness.
हमारा शरीर कोई प्रकाश प्रकट नहीं करता, केवल अंधकार ही प्रकट करता है.
Your home, this entire planet Earth, everything is just emanating darkness.
हमारा घर और ये सारी प्रकृति, ये सारी धरती केवल अंधकार ही फैलाती है.
This is the sign of ignorance.
और ये अज्ञानता का लक्षण है.
Therefore, we need so many artificial devices to create light.
और इसीलिए हमें प्रकाश पैदा करने के लिए बहुत आधुनिक प्रकरणों का की आवश्यकता है.
Or we require the sun, which is external to ourselves, to give us light.
या हमें सूर्य की आवश्यकता होती है जो हमारे से परे है.
But in the spiritual world, because everything is situated within truth, everything gives its own light.
परंतु क्योंकि आध्यात्मिक जगत में सब कुछ सत्य पर निर्भर है इसलिए सब कुछ प्रकाशमान है.
Therefore, Krishna explains in Gita that in that spiritual world there is no need for sun or moon or electricity.
इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं कि उस आध्यात्मिक संसार में सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश या किसी बिजली की आवश्यकता नहीं है.
In fact, the spiritual sky in which the spiritual planets within the spiritual world are situated is the effulgent, brilliant light emanating from the body of Krishna himself.
वास्तव में उस सूर्य, उस आध्यात्मिक आकाश में जितने भी लोक हैं, वो सब कुछ प्रकाशमान है जो प्रकाश कृष्ण के दिव्य शरीर से निकल रहा है.
But somehow or other we have come into this cloud. of material existence, where the light is not able to penetrate.
परंतु दुर्भाग्यवश हम इस अंधकार के जगत में आ गए हैं जहां पर वो प्रकाश आ नहीं सकता.
It is explained that material existence is spiritual and material mixed, because the soul is of that same pure spiritual nature as the spiritual world.
जैसा हमने बताया भौतिक संसार में आध्यात्मिक और भौतिक दोनों का मिश्रण है क्योंकि जो जीव आत्मा है वो वही आध्यात्मिक संसार का अंश है.
The soul within every living entity is Satchit Ananda, eternal, full of knowledge and full of bliss.
हर आत्मा का स्वरूप है सत चित और आनंद यानी शाश्वत पूर्ण आनंद से और पूर्ण ज्ञान.
But due to the cloud of maya or ignorance, that eternal soul is identifying with a body which is temporary and full of ignorance, and with all the designations of this body that are similarly infected by ignorance.
परंतु अज्ञानता के प्रभाव से हर जीव ये सोचने लगता है कि वो शरीर है.
The goal of life is to come back into light and out of darkness.
जीवन का उद्देश्य है अंधकार से निकलकर प्रकाश में आ जाना.
To be free from all of these misconceptions.
हर प्रकार के मिथ्या बातों से मुक्त हो जाना.
To realize our identity with the spiritual world, not with this material world.
और अपनी पहचान उस आध्यात्मिक जगत से बना लेना.
But as long as we are attached to the designations that are temporarily imprisoning us in this material world, we cannot enter into the consciousness of spiritual truth.
परंतु उस आध्यात्मिक चेतना में हम तब तक प्रवेश नहीं कर सकते जब तक कि हम इस भौतिक उपाधियों से आसक्त हैं.
The purpose of real religion is Sanatan Dharma, to understand our eternal occupation in the service of God.
सच्चा धर्म है सनातन धर्म जिसका अर्थ है ये समझ जाना कि हमारा भगवान से संबंध क्या है.
Through the process of engaging in that service, we purify ourselves of all of these misconceptions.
और भगवान से सेवा भाव में जुड़ जाने के बाद हम सारी इस मिथ्या उपाधियों से मुक्त हो सकते हैं.
The great misconceptions are that we are this body. We are from a particular family. We are from a particular nation. We are from a particular caste. We are from a particular species of life.
सबसे बड़ा भ्रम है कि हम ये शरीर हैं या हम इस परिवार के हैं या हम इस राष्ट्र के हैं या हम इस जाति के हैं या हम इस योनि के हैं.
We are from the spiritual world. We are part of Krishna.
हम तो आध्यात्मिक जगत के हैं और कृष्ण के अंश हैं.
And we should strive within this life free ourselves from these superficial, artificial designations.
और हमें प्रयत्न करना चाहिए अपने जीवन में कि हम इन सारी बनावटी उपाधियों से मुक्त हो सकें.
Srila Prabhupada would explain how these material designations of this world are actually just imitations of the realities of the spiritual world.
Srila Prabhupada समझाते थे कि इस भौतिक संसार में ये जितनी भी उपाधियां हैं ये आध्यात्मिक संसार की एक नकल माती हैं.
Just like there is a real man and a real woman.
जैसे कि एक सच्चा पुरुष है या स्त्री है.
But in the Western world, when they want to sell you some type of clothes, in the windows in front of the shops, they make a statue called a mannequin, and it looks just like a beautiful woman or handsome man. And they put nice clothes on, and people walk by and say, "Oh, I want to look like that."
जैसा पाश्चात्य देशों में हम देखते हैं कि बड़ी-बड़ी दुकानों के आगे ऐसे पुतले खड़े कर दिए जाते हैं जो ठीक मनुष्य के जैसे एक पुरुष या स्त्री की भांति होते हैं और उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाकर सबको आकर्षित किया जाता है.
The mannequin is made out of plastic.
ये पुतला तो केवल प्लास्टिक से बना हुआ है.
But somehow or other, the plastic is molded to look like the most beautiful woman and most handsome man.
परंतु इस पुतले की रचना ऐसी की गई है कि वो बहुत सुंदर पुरुष या स्त्री दिखाई देता है.
And they're dressed in very luxurious different types of clothing.
और उन्हें सुंदर सुंदर वस्त्र कपड़े आभूषण पहना दिया जाता है.
And people walk by, even the very wealthy, intelligent people walk by, and they see this plastic person wearing nice clothes, and they think, oh, I want to look just like that.
और बहुत बुद्धिमान लोग भी जब आते जाते रहते हैं तो सोचते हैं कि मुझे भी ऐसा ही दिखना चाहिए.
How much money do I have?
कितना धन है मेरे पास?
I don't have enough money to afford such a beautiful suit and tie or such a beautiful dress.
मेरे पास इतना धन क्यों नहीं है कि मैं ऐसा सूट या टाई पहन सकूं?
Therefore, I will somehow or other make money.
तो मैं कोशिश करूंगा इतना धन कमाने की.
I have my credit card.
मेरे पास मेरा क्रेडिट कार्ड है.
I may have no money, but I have this piece of plastic.
मेरे पास धन नहीं होगा, लेकिन ये प्लास्टिक का टुकड़ा है.
And this piece of plastic will make me look like that piece of plastic.
और इस प्लास्टिक के टुकड़े से मैं उस बड़े प्लास्टिक के टुकड़े जैसा दिखाई दूंगा.
That is the goal of my life.
और यही मेरे जीवन का उद्देश्य है.
I will work and work over time somehow or other, but I will pay it.
कि मैं परिश्रम करता जाऊंगा लेकिन एक दिन इसे प्राप्त करूंगा.
So actually the mannequin is just an artificial imitation of a real person.
तो वास्तव में पुतला केवल एक बनावटी ढांचा है एक सच्चे जीव का.
Similarly, everything in this material world is just an artificial imitation of what exists in eternal truth in this spiritual world.
उसी प्रकार से जो भी आध्यात्मिक संसार में वास्तव में प्रकट है उसका बनावटी स्वरूप हम इस भौतिक संसार में देखते हैं.
We have these bodies.
हमारे ये शरीर हैं.
They're not much different than plastic.
इनमें और प्लास्टिक में बहुत अंतर नहीं है.
What is plastic? It's just combination of earth, water, fire, air and ether.
प्लास्टिक क्या है? जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु इन सब का मिश्रण है.
So this body we're living in, it's just also a mixture of earth, water, fire, air and ether.
और हमारा शरीर भी ये सभी तत्वों का बना हुआ है.
It is just slightly different portions within this mixture.
और इनमें अलग अलग मिश्रण अलग होंगे, बाकी तो सब एक ही है.
But this body is just a lump of matter.
परंतु ये केवल एक भौतिक तत्व पड़ा हुआ है.
It is an imitation, artificial manifestation of real bodies of the spiritual world.
और आध्यात्मिक संसार में जो हमारे वास्तविक शरीर हैं उनका ये केवल एक अप्रकट और विस्मृत रूप है.
We read in the Vaikunth planets there are bodies that are so beautiful they are not subjected to time, they are not subjected to old age, disease, death or rebirth. They are eternally beautiful.
हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि वैकुंठ लोकों के जो जीव हैं उनके जो शरीर हैं वो बहुत ही सुंदर हैं और जन्म मृत्यु जरा व्याधि से पूरी तरह से परे हैं.
And in the bodies in the spiritual world, the body is a source of ecstasy forever.
और ये जो शरीर इस आध्यात्मिक संसार में जो हमारे हैं यही हर प्रकार का आनंद देते हैं.
The body doesn't need anything external to itself. It's an ecstasy just in its own existence.
अपने आप में ही हम पूर्ण आनंद प्राप्त कर सकते हैं.
Because it is Krishna's spiritual energy.
क्योंकि ये कृष्ण की आध्यात्मिक शक्ति है.
But in this material world, the bodies are miserable places. We have to keep getting so many things from external just to keep it from suffering.
और इस भौतिक संसार में हमारे शरीर हर प्रकार की पीड़ा के ही स्रोत हैं क्योंकि हमें कितने प्रयत्न करने पड़ते हैं हम इसे आनंद देने के.
The body in and of itself it gets hungry.
अपने आप में ही कभी भूख लगती है.
So you have to find some food and put it in the body.
और फिर हमें भोजन लाना पड़ता है और अपने पेट में डालना पड़ता है.
Gets thirsty, you have to somehow or other get some water and put it in the body.
और जब प्यास लगे तो पानी डालना होता है.
It gets lusty, you have to somehow or other find some sex object and rub it on the body.
और जब बहुत काम वासनाएं उत्पन्न होती है तो किसी दूसरी योनि के तत्वों को ढूंढना होता है.
It becomes tired. And somehow or other you have to find a place for the body to collapse on and sleep.
और जब हम बहुत थक जाते हैं तो कहीं न कहीं विश्राम करने के लिए ढूंढना होता है.
And the ears need something to hear and the eyes need something to see and the nose needs something to smell. The body is completely unsatisfied in and of itself.
और इसी प्रकार अन्य इंद्रियां भी जैसे कान आंख नाक ये सब कुछ ढूंढती रहती हैं लेकिन शरीर अपने आप में कभी संतुष्ट नहीं होता.
And the body gets sick.
और फिर हम कभी बीमार हो जाते हैं.
So you have to find so many different types of medicines to put in this body.
और फिर अलग-अलग दवाइयों को ढूंढना होता है.
But in the spiritual world the body is Satchidananda. It is full of ecstasy.
परंतु आध्यात्मिक संसार में हमारा शरीर सच्चिदानंद है.
In the spiritual world it's not that the body needs to see Krishna.
आध्यात्मिक संसार में यह नहीं है कि हमारे शरीर को आवश्यकता है कृष्ण को देखने की.
In the spiritual world the body is so full of ecstasy but it loves Krishna so much it just wants to offer that ecstasy to Krishna.
आध्यात्मिक संसार में हमारा शरीर कृष्ण प्रेम से इतना भरा हुआ रहता है कि वो हमें भगवान को दिखाने के लिए हम उत्सुक रहते हैं.
And Krishna, he wants to just give all his ecstasies to his devotees.
और कृष्ण अपना प्रेम अपना महाभाव अपने भक्तों में बांटना चाहते हैं.
So everyone is completely self-satisfied with Krishna.
और इस तरह से हर जीवात्मा संतुष्ट रहता है कृष्ण के संग में.
There's no competition in the spiritual world because everyone is happy.
वहां कोई प्रतियोगिता की भावना नहीं है क्योंकि सभी खुश हैं सुखी हैं.
It is said that time is conspicuous by its absence in the spiritual world.
वहां बताया जाता है कि समय अपने विस्मृत रूप से उत्पन्न रहता है.
In material existence, even this body which is so much a cause of so much hardships and pains, it is moment by moment being destroyed by the power of time.
इस भौतिक संसार में हम देखते हैं कि समय के प्रभाव से हमारा शरीर जीर्ण होते जाता है.
How long does a baby remain a baby?
कितने दिनों तक हम देखते हैं कि एक शिशु छोटा बच्चा एक शिशु के समान रहता है.
We're constantly passing through various phases of life until old age and death.
मृत्यु और वृद्ध अवस्था तक हम देखते हैं कि वो अलग-अलग परिवर्तन में होते जाता है.
And actually if you analyze correctly most of life is old age.
और अगर हम गौर से देखें तो हमारा अधिकतर जीवन वृद्ध अवस्था का होता है.
It's not that old age is just at the very end.
ऐसा नहीं है कि वृद्ध अवस्था केवल हमारे अंत के समय आता है.
If somehow or other you're fortunate to live a long life of 90 years or 100 years, how much of that is old age?
किसी न किसी प्रकार अगर हम 90 साल जी लें तो वो कितनी वृद्ध अवस्था है.
After the age of 25 your body starts going down.
25 की आयु के बाद हमारा शरीर गिरने लगता है.
That means 25 years it's going up and 75 years it's going down.
25 वर्ष ऊपर जाता है फिर 75 वर्ष नीचे की तरफ जाता है.
And once it gets to its mid 40s it's really getting down.
और जब हम 40 की उम्र में आते हैं तब बहुत ही नीचे की तरफ चला जाता है.
In the west they're always trying to create illusions to try to convince you that you can be happy in a place of misery.
पाश्चात्य देशों में हम देखते हैं कि बहुत प्रयत्न किए जाते हैं हमें यह बताने के लिए कि हम यहां सुखी हो सकते हैं.
Therefore they have created this famous saying life begins at 40.
इसीलिए वहां पर एक बहुत एक कहावत है कि जीवन 40 के बाद शुरू होता है.
When people are starting to get arthritis and they're starting to their eyes don't work properly they have to get pieces of glass to look through and their teeth start coming out and
their hairs start getting gray. That's life begins now.
और वो कहते हैं कि जब आंखों से दिखाई नहीं देता है, जब हमारे दांत गिरने लग जाएं और हमारे जो केश हैं वो सफेद हो जाएं, तब हमारा जीवन वास्तव में शुरू हो रहा है.
This is the illusion within the illusion.
भ्रम में एक और भ्रम है.
And then you get to 50.
फिर 50 की उम्र आती है.
Your people 50, they're already grandmother and grandfather.
50 की उम्र में हम दादा दादी भी बन जाते हैं.
Body's falling apart.
और शरीर जीर्ण होता है.
Whatever happened to the good old days, what I can run and jump?
हम सोचने लगते हैं कि वो हमारे दिन कहाँ गए जब मैं कूदता था और भागता था.
Dance.
या नाचता था.
And then 60.
और फिर 60 की उम्र आ जाती है.
And then 70.
और फिर 70.
80.
और फिर 80.
90.
और फिर 90 की साल.
100.
और इस प्रकार से 100 वर्ष पूरे.
Most of life is old age. Nobody likes old age.
तो ज्यादातर तो जीवन हमारा वृद्ध अवस्था का है जो किसी को पसंद.
Few short years of youth, and when you're really young, you can't even enjoy the youth because you think I'll enjoy when I grow up. Now I have to go to school and I hate school.
आज हम बहुत नौजवान होते हैं तब हम सोचते हैं कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब आनंद लूंगा.
Somehow I'll tolerate going to school and when I grow up I'll be happy.
हम सोचते हैं कि अभी मैं किसी न किसी प्रकार से स्कूल कॉलेज जाने की इस पीड़ा को भुगतूंगा फिर मैं सुखी बनूंगा.
But by the time you get out of school you're just getting toward old age.
लेकिन जब तक हम स्कूल से बाहर निकलते हैं तो हम बुढ़ापे की ओर आ जाते हैं.
You only have a few years left.
और केवल थोड़े ही वर्ष रह जाते हैं.
And then you're so worried about getting a good job and finding a nice husband or wife and establishing yourself in the world. You think after I establish myself, then I'll enjoy my life.
फिर हम कोशिश करते हैं, चिंता रहती है कि नौकरी लेनी है, फिर कोई स्त्री या पुरुष पति पत्नी की तलाश में.
So what kind of existence is this? But in the spiritual world, there is no time.
तो आध्यात्मिक संसार में समय इस प्रकार का नहीं है.
Everything is eternal.
सब कुछ शाश्वत है.
Everything is full of youth.
सब कुछ नव यौवनम है.
The children in the spiritual world remain children forever.
वहाँ पे जो बच्चे हैं वो हमेशा के लिए बच्चे ही रहते हैं.
And the adults in the spiritual world remain adults forever.
और जो बड़े हैं वो हमेशा बड़े रहते हैं.
There's no old age. There's no difficulty. Simply happiness.
वहाँ कोई वृद्ध अवस्था नहीं है, कोई समस्याएं नहीं है, केवल आनंद ही आनंद है.
So those same beautiful, blissful spiritual bodies in the spiritual world, in this material world, it is all imitation.
तो उन सुंदर दिव्य आनंद से पूर्ण शरीरों का इस भौतिक संसार में एक केवल विकृत स्वरूप होता है.
It is a perverted reflection.
इसे ही एक विकृत स्वरूप मानते हैं हम.
And yet we are spending this whole human life, which is so precious and rare, trying to enjoy a perverted reflection.
और हम इस बहुत ही दुर्लभ मनुष्य जीवन का प्रयोग करते हैं उस विकृत स्वरूप से कुछ आनंद ढूंढने के लिए.
It's like if reflection is like a mirror. It's not really you. It's just appearing to be you.
विकृत का मतलब है प्रतिबिंब. जब हम प्रतिमा देखते हैं तो हम नहीं हैं, केवल हमारा प्रतिबिंब है.
What if someone is hungry for eating bananas?
जैसे मान लीजिए किसी को केले खाने की बहुत भूख लग गई हो.
So they put their kela into the mouth of the image in the mirror like this.
और यदि हम उस केले को उठाकर एक कांच में डालने का प्रयत्न करें तो क्या होगा?
And make a big mess.
बहुत समस्या हो जाएगी.
And thinking, why I'm not satisfied?
हम सोचे कि मैं संतुष्ट क्यों नहीं हो रहा?
I need another kela.
मुझे एक और केला चाहिए.
So smash it into the mouth of the image in the mirror.
और हम दूसरा केला लेकर उस कांच के प्रतिबिंब में.
And as you're pushing it, You're actually going like this. And you see the image going like this. You say, look, it's eating, it's eating.
और इस प्रकार से हम अपने प्रतिबिंब को देखते हैं और सोचते हैं कि देखो मैं खा रहा हूं।
But still I'm not satisfied.
फिर भी मैं संतुष्ट क्यों नहीं हो रहा?
I need thousands of kelas.
मुझे हजार केले चाहिए।
I need crores of kelas.
मुझे करोड़ों केले चाहिए।
Still we're not satisfied.
फिर भी हम कभी संतुष्ट नहीं होंगे।
If you saw someone living like this, wouldn't you think they were quite foolish?
यदि आपने ऐसे किसी आदमी को देखा तो आप ये नहीं सोचेंगे कि बहुत मूर्ख है?
If you saw someone like this, how many of you would think they were foolish? You can raise your arms.
अपने हाथ ऊपर कीजिए, ऐसा कौन कौन सोचेगा?
हरिवो। Everyone who is raising their arms is doing the same thing. That is the problem.
जो भी ऐसा कर रहा है, जिसने भी अपना हाथ ऊपर किया, वो सब कुछ इसी प्रकार से केले खा रहे हैं।
Same problem. You're thinking everyone else is foolish, but actually you're foolish.
हम सोचते हैं कि सभी मूर्ख हैं, लेकिन वास्तव में हम भी तो मूर्ख हैं।
Because we're all trying to be happy in this body, which is a perverted reflection of our real body in the spiritual world.
क्योंकि हम इस जड़ शरीर में सुखी बनने का प्रयत्न कर रहे हैं जो इस आध्यात्मिक संसार का एक विकृत स्वरूप है।
And we're putting so many kelas in this body and still we're not happy.
और हम इस शरीर में कितने केले डाल रहे हैं फिर भी हम संतुष्ट नहीं हैं।
We're accumulating so much wealth and we're decorating our bodies with such nice clothes and we're having so many nice pleasures, but we're not satisfied.
हम इतना धन खोज रहे हैं, इतना ऐश्वर्य खोज रहे हैं, परंतु फिर भी कोई संतुष्ट नहीं है।
Because this body is a perverted reflection of our true self.
क्योंकि ये शरीर हमारे वास्तविक स्वरूप का एक प्रतिबिंब है।
But wherever there is a reflection, there must be an origin which is real.
लेकिन ये भी आवश्यक है, जहाँ भी प्रतिबिंब है, वहाँ वास्तविक प्रतिमा भी है।
And that is the purpose of this human form of life.
और मनुष्य जीवन का यही उद्देश्य है।
To return to our original nature.
कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो जाएं।
To come out of the darkness of ignorance into the light of truth.
अज्ञानता के अंधकार से निकलकर ज्ञान के प्रकाश में आ जाना।
To relinquish all these misconceptions of who we are and what is reality and enter into reality.
इन सभी मिथ्या भ्रम को त्याग कर कि हम कौन हैं और हमारा अस्तित्व क्या है और वास्तविक तत्व को सत्य को समझ जाना।
And within that reality is real happiness.
और इसी सत्य में वास्तविक सुख है।
सनातन धर्म। सनातन धर्म इज द पर्पस ऑफ एवरी ह्यूमन बींग्स लाइफ।
हर मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है सनातन धर्म।
To return back home, back to Godhead.
अपने शाश्वत भगवत धाम को वापस चले जाना।
To understand that pure eternal part of God and the spiritual world that is present within our own heart.
ये जान लेना कि हमारे हृदय में वही दिव्य शाश्वत भगवान का अंश है।
And to allow that spiritual spark to become free of all the unwanted imitation coverings and return to its real spiritual abode or home.
Or us divya,
Prabhupada said, back home, back to Godhead.
Us divya atma ko is bhautik sansar ki sabhi mithya baaton se mukt karkar us adhyatmik sansar mein pahuncha dena.
That is real pleasure.
Yehi sachcha anand hai.
And it is for this reason that we come together to follow the path of bhakti.
और इसी कारणवश हम भक्ति मार्ग में आते हैं।
भक्त्या माम अभिजानति यावन्यष्टस्मितात्वतः। It is only through bhakti that the original nature of the soul can be revived.
और केवल भक्ति के द्वारा ही हमारे वास्तविक स्वरूप को हम जान सकते हैं.
Through devotional service, we can become freed from all of these misconceptions. Sarvopadiva nirmuktam tatparatvena nirmalam rishikena rishikena sevanam bhaktirutama. The same mind, the same senses that are causing us so much difficulty now, if they are just utilized according to the real nature of the soul, in the service of Krishna, we become purified.
और केवल भक्तिमय सेवा से हम शुद्ध हो सकते हैं. अपने मन इंद्रियों को उस सेवा में लगाकर हम सब कुछ पवित्र कर सकते हैं.
If we have any attachment to any of these misconceptions of this world, we cannot go back to the free light of the spiritual realm.
अगर इस संसार के किसी भी उपाधि से हमें आसक्ति है तो हम उस भौतिक उस आध्यात्मिक संसार को कभी नहीं प्राप्त कर सकते.
We have to take birth again and again and again.
और अनेकों बार हमें जन्म लेना होगा.
Therefore, before we die, we must become detached from all these upadis or unwanted, unreal designations.
और मृत्यु से पहले ही हमें इन सभी उपाधियों से मुक्त हो जाना चाहिए.
We must free ourselves from the illusions, from these mannequin, from these plastic bodies and all things related to these plastic bodies.
और इन प्लास्टिक के पुतलों की जो उपाधियां हैं, इससे हमें मुक्त होना है.
We spend our whole life trying to perpetuate this illusion.
हमारा सारा जीवन इस भ्रम को और बढ़ाने में लगा जाता है.
We're supposed to be spending our whole life freeing ourselves from this illusion.
किंतु वास्तव में हमें प्रयत्न एक ये करना चाहिए कि हम इन भ्रम से मुक्त हो सकें.
The system of varnashram dharma is the scientific process where from early childhood through all stages of life, brahmachari, grihastha, vanaprastha, sannyas, brahman, kshatriya, vaishya, shudra, every stage of life and every occupation we may perform within those stages of life, we are struggling to free ourselves from these upadis or misconceptions.
और वर्णाश्रम पद्धति भी ऐसी वैज्ञानिक पद्धति है जहाँ पर हर आश्रम में जैसे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इनमें हम यही कोशिश करते हैं कि हम अपने आप को इन उपाधियों से मुक्त कर लें.
But where there is no understanding of what is varnashram dharma, people are so foolishly spending their whole life going into deeper and deeper implications, complications within this illusion.
और वर्णाश्रम के बारे में जानकारी न होने के कारण ही हम इस भौतिक संसार में अनेकों प्रकार के भ्रमों में फंस जाते हैं.
Because we are covered by this cloud of Maya.
क्योंकि माया के इस बादल ने हमें ढक रखा है.
And this cloud of Maya is so thick, so dense, and so powerful that without the help of Krishna and his representatives, we can never get out. We can never even properly strive to get out.
और ये माया का जो बादल इतना घना और शक्तिशाली है कि हम इससे बाहर नहीं निकल सकते.
Therefore, Krishna comes to this world to tell us, wake up. This is a world of illusion. It is a world of death. All these designations, all these relationships, they're like foaming bubbles within the ocean of material existence about to burst into oblivion.
और इसीलिए भगवान कृष्ण आते हैं हमें जगाने के लिए और ये बताने के लिए कि ये सारी की सारी उपाधियां इस भौतिक संसार के सागर में बुलबुलों की भांति हैं जो कभी भी फूट सकते हैं.
Come to the real abode, to your real home, and bring everyone with you.
तो आ जाओ अपने उस आध्यात्मिक संसार में और अपने साथ सभी को ले आओ.
Back to Godhead, where there is reality.
भगवत धाम जहां पर सब कुछ सत्य पर निर्भर है.
In order for this to be possible, Krishna, his mercy, which comes through his avatars, which comes through his holy scriptures, which comes through the spiritual master and the devotees, they come to pull us out of this material misconceptions.
और इस सब को संभव करने के लिए स्वयं कृष्ण अपने अवतारों के द्वारा, इन शास्त्रों के द्वारा और अपने प्रतिनिधि गुरु के द्वारा हमें खींच निकालते हैं.
If they do not pull, we will just remain stuck forever.
और अगर ये सारे हमें खींचे नहीं तो हम हमेशा के लिए यहीं फंसे रहेंगे.
रोहिणी नंदन प्रभु, देवी प्रिया माताजी, विष्णु प्रिया इन बालादेव, they so nicely organized this program tonight. We are so thankful to them.
और हम श्रीमान रोहिणी नंदन प्रभु और उनके परिवार के अति आभारी हैं कि जिन्होंने ये सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया है.
Recently they put on a wonderful drama about Maharaj Chitraketu.
कुछ दिन पहले इन्होंने एक सुंदर ड्रामा नाटक किया था महाराज चित्रकेतु के जीवन पर.
रोहिणी नंदन महाराज was the king of the planet earth.
रोहिणी नंदन महाराज ये इस भौतिक संसार के राजा बन गए.
For about 25 minutes.
करीब 25 मिनट के लिए.
And Devi Priya was the queen, the favorite queen.
और देवी प्रिया माता जी ये सारे संसार की प्रिय रानी बन गई.
And Prem Manjari and Jamuna Priya were not very happy about this.
और कुछ माताजी उनके बारे में इस बारे में खुश नहीं थी.
So in this beautiful story, the little child Harshashoka, he died.
और इस कहानी में ऐसा होता है कि एक छोटा सा पुत्र है इनका जिसका नाम है हर्षशोक और उसकी मृत्यु हो जाती है.
Just like everyone dies.
जैसे कोई भी मरता है उसी प्रकार.
So he died.
तो ये भी मर गया.
What's the big thing? The inevitable takes place. But then there was so much sadness and so much illusion due to the thought, this is my body and this is my son.
तो इसमें कोई विशेष बात नहीं थी, परंतु फिर भी इसकी मृत्यु पर बहुत आसक्त होने के कारण हर प्रकार का शोक पैदा हो गया.
And due to this illusion, Chitraketu Maharaj and his wife, they were plunged in an ocean of unrelenting grief.
और इस देहात्म बुद्धि के भ्रम के कारण महाराज चित्रकेतु और उनकी जो रानी थी ये ऐसे अथाह शोक में डूब गए.
They were so deeply submerged in this bodily conception of life.
और इस देहात्म बुद्धि के इस तत्व में बहुत पूरी तरह से वो फंस गए थे.
But Narada Muni and Angira Mudi came and somehow or other pulled them out of this misconception.
और फिर नारद मुनि और अंगिरा मुनि दोनों ने मिलकर इनको इस भ्रम से खींच निकाला.
Explained, your real family is in the spiritual world.
और उन्हें बताया कि तुम्हारा वास्तविक परिवार आध्यात्मिक संसार में.
Your real body is in the spiritual world.
तुम्हारा सच्चा शरीर आध्यात्मिक संसार में.
Real life is in Vaikuntha.
तुम्हारा सच्चा जीवन वैकुंठ में है.
Come out. But we don't want to come out.
लेकिन हम निकलना नहीं चाहते.
Srila Prabhupada told the story how Indra was cursed to become a hog.
Srila Prabhupada एक कहानी बताते थे कि किस प्रकार एक बार इंद्र को ये श्राप मिला कि वो एक सुअर बन जाए.
And as a hog, he was eating fresh stool every day.
और एक सुअर के रूप में वो रोज बहुत ही शुद्ध विष्ठा खाता था.
Why is everyone laughing?
ताजा विष्ठा. I said pure stool.
Why did you say pure stool? I don't know what is the difference. Only hogs know what is the difference.
Maharaj keh rahe hain ki shuddh vishta mein aur taza vishta mein kya antar hai, ye keval suar hi jante hain.
Ah, and then he
somehow or other found a beautiful, beautiful hog to be his wife.
फिर उसने एक मादा सुअर को ढूंढा और अपनी पत्नी बना लिया.
And attracted by her graceful and sexually stimulating qualities, he had children, so many children.
और फिर वो उस मादा सुअर सुअरनी या उसकी जो आकर्षित जो रूप था उससे उसने कुछ बच्चे उत्पन्न किए.
अरे वाह, सो मेनी नाइस चिल्ड्रन, नाइस वाइफ, नाइस स्टूल, ही वाज एंजॉयिंग लाइक एनीथिंग.
और इस तरह से इंद्र बड़े आनंद में थे कि सुंदर बच्चे और सुंदर विष्टा.
But his real duty was to be the king of heaven with Sachi. He has a beautiful wife named Sachi. And he has so many beautiful... One of his children is Vamanadev. His brother was Vamanadev, the Lord himself.
किंतु इंद्र का वास्तविक जीवन तो उस स्वर्ग लोक में है जहाँ पर वो सारे स्वर्ग का राजा है और सची जैसी सुंदर उसकी पत्नी है और भगवान स्वयं वामनदेव के रूप में उसके भ्राता हैं.
He lives in big, beautiful palace with Nandana gardens all around, Parijata trees and all opulences beyond earthly imagination.
और उसके विशाल ऐसे ऐश्वर्यशाली ये.
But the power of Maya is so great that when you're in the body of a hog, you become completely attached to your body and all things in relation to your body.
परंतु इस माया शक्ति का प्रभाव इतना प्रबल है कि हम हर तरह से भूल जाते हैं और आसक्त हो जाते हैं शरीर से.
So Lord Brahma, he said, Indra, please come back. The curse is finished. The term of your curse is ended. Now come back to the heavenly kingdom.
और फिर एक बार ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि इंद्र तुम्हारा श्राप अब समाप्त हो गया है, अब चलो लौट चलो.
इंद्र said, How can I leave such a faithful wife?
और इंद्र ने कहा कि मैं ऐसी पतिव्रता पत्नी को कैसे छोड़ सकता हूं.
How will my little piglet children survive without me?
और मैं अपने छोटे नन्हे से बच्चों को कैसे छोड़ सकता हूं, ये मेरे बिना नहीं जी सकते.
And they don't have such nice stool anywhere else.
और यहां के अलावा और कहीं भी ऐसा अद्भुत विष्टा कहीं नहीं मिलेगा.
How can I give it up? Impossible.
तो ये असंभव है सब छोड़ना.
So he was attached. But then Brahma, he made a nice arrangement.
तो फिर ब्रह्मा जी ने एक योजना बनाई.
The butcher came and slaughtered his wife and slaughtered all his children and picked him up and was ready to slaughter him.
और फिर एक कसाई आया और उसने उस सुअर रूप के इंद्र के सभी बच्चों को मार दिया, उसकी पत्नी को मार दिया और फिर इंद्र को पकड़ लिया.
And then Indra said, Brahma ji, I'm ready.
फिर उन्होंने कहा ब्रह्मा जी अब मैं तैयार हूं.
So do we have to be slaughtered in this way? How many births and deaths before we learn our lesson?
तो अपना पाठ सीखने से पहले हम कितनी बार इस प्रकार से तड़पते रहेंगे?
Our origin, our reality is billions, trillions, unlimitedly greater than that of Indra.
हमारी जो सच्चाई है, हमारा जो स्वरूप है, ये इंद्र के इस स्वरूप से और उसके सत्य से अनगिनत बार और महत्वपूर्ण है.
We are eternal parts of Krishna with eternal forms in the spiritual world, in the family of Krishna.
हम भगवान के दिव्य शाश्वत अंश हैं और भगवान के इस दिव्य परिवार के एक सदस्य हैं.
but we will not let go of our attachments to these artificial, illusory, perverted reflections of designations and attachments in this material world.
परंतु फिर भी इन सभी उपाधियों को जिनको हमने बहुत ही बुरी तरह से जकड़ रखा है हम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते.
But somehow or other, before death, we must completely purify our hearts of all of these misconceptions.
परंतु किसी न किसी प्रकार से मृत्यु से पहले हमें इन सभी उपाधियों से मुक्त हो जाना चाहिए.
We must be willing to invest our life and everything in relation with our life in this spiritual world.
अपने जीवन का सब कुछ और जीवन से संबंधित सब कुछ आध्यात्मिक संसार में लगाएं.
सर्व धर्मान् परित्यज्य मम एकं शरणं व्रज. अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मास्तुच. Then we can return back home, back to God.
तो इस प्रकार से अगर हम भगवद गीता का पालन करें तभी हम भगवत धाम पहुंच सकते हैं.
थैंक यू वेरी मच.
बहुत बहुत धन्यवाद.
By chanting the holy names of the Lord and living under the direct orders of the Lord and allowing the great souls to pull us out of this material existence, there is hope for all of us.
तो इस तरह से हमेशा हरिनाम संकीर्तन में भाग लेकर और महान आचार्यों को हमें खींच लेने के लिए एक ऐसी परिस्थिति बनाने कर हम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं.
हरे कृष्ण. Is there any questions?
कोई प्रश्न है किसी?
लेकिन दुख तो अपने आप चले क्यों आता है हमारे पीछे?
Because the nature of the world is miserable.
क्योंकि ये संसार ही ऐसा है.
We have to make so many arrangements to avoid misery.
हमें कितनी अलग-अलग प्रकार की योजनाएं करनी होती है दुखों से बचने के लिए.
If we don't make arrangements, we suffer.
और अगर हम ऐसा न करें तो हम बहुत पीड़ा को भुगतेंगे.
If you don't go out and work to eat, you suffer.
अगर हम बाहर जाकर काम काज न करें तो हम पछताएंगे.
But in the spiritual world, the nature is happiness.
और आध्यात्मिक संसार का स्वरूप है केवल सुख.
And if you want to suffer, you have to leave.
और अगर आपको मुक्त होना है तो यहां से निकलना होगा.
And that's where we are, in the place of suffering.
और हम यहाँ फंसे हुए हैं हर प्रकार की पीड़ाओं.
But on another level, due to our previous karma or destiny, happiness comes of its own accord, and misery comes of its own accord.
दूसरे स्तर पर अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार दुख और सुख आते रहते हैं.
Due to our past karmas, sometimes happiness just comes.
पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार कभी कभी केवल सुख आते हैं.
And sometimes miseries just come.
और कभी दुख आते हैं.
But they both just go.
लेकिन दोनों ही चले भी जाते हैं.
But the soul is searching for something that is forever.
और आत्मा एक ऐसा शाश्वत सुख ढूंढ रहा है.
And that is Krishna.
और ये है कृष्ण प्रेम.
Maharaj, it is given in Bhagavatam that our spiritual master introduces the disciple to Lord in the spiritual world. the spiritual master introduces the disciple to the Lord, that means our spiritual master will be there in the spiritual world.
इनका प्रश्न है कि आध्यात्मिक संसार में क्या गुरु हमारा परिचय कृष्ण से करवाते हैं क्या?
Yes.
हाँ.
Prabhupada is our spiritual master. I'm just his, the servant of his servants.
Srila Prabhupada hi hamare guru hain. Main keval unke daason ka daas hoon.
Is there any other questions?
Aur koi prashn?
Hare Krishna. Maharaj, just now you said Lord Vamandev was the brother of Indra. But history shows that many souls have become Indra, and Indra is a post. So is it like that whoever becomes Indra, the Lord Vamandev is a brother of it, or in that particular birth?
Inka prashna hai ki aapne bataya ki Vamandev Indra ke bhai ke roop mein aaye. Indra ek padvi hai. To kya jab bhi koi vyakti Indra banta hai, to kya Bhagwan unke भाई बन के आते हैं क्या?
इंद्र इज अ पोस्ट एंड इफ दैट इंद्र इज इन द पोस्ट एट द टाइम व्हेन वामनदेव अपीयर्स विद इन दिस यूनिवर्स देन ही बिकम्स हिज ब्रदर.
तो इंद्र एक पदवी जरूर है, और जब भी भगवान आते हैं उस समय अगर कोई व्यक्ति इंद्र बना हुआ हो तो वो उनका भाई बन सकते हैं.
But you should not be so concerned with becoming Indra.
लेकिन हमें इंद्र बनने की चिंता नहीं रहनी चाहिए.
Because there are so many controversies that are always around Indra.
क्योंकि इंद्र के साथ बहुत समस्याएं रहती हैं.
So many times he's hiding in the stems of lotuses because he offends great sages.
और इसीलिए इंद्र कई बार हर जगह छुपते रहते हैं क्योंकि वो बहुत वैष्णव अपराध करते रहते हैं.
So better you chant Hare Krishna and go back to Godhead.
अच्छा ये होगा कि हम हरे कृष्ण जप करें और भगवत धाम पहुंच जाएं.
So at this time we would like to invite everyone to chant Hare Krishna and go back to Godhead.
सबसे अब हम निवेदन करेंगे कि हम अब हरिनाम संकीर्तन करें और भगवत धाम पहुंच जाएं.